الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البروج. سورة البروج مکی سورت ہے، اور یہ سورت بھی پچھلی سورتوں سے مشابہ ہے، کیونکہ یہ بھی آسمان کے ذکر سے شروع ہو رہی ہے، اور اس میں بھی مومنوں کے لیے بشارت اور کفار کے لیے وعید ہے. قرآن مجید کی تعظیم ہے اس میں، اس سورت میں بیان کی گئی. اور اس سورت میں ایک تسلی ہے ایمان والوں کے لیے، اور وہ جو ایمان والوں کو ستاتے ہیں ان کے لیے وعید ہے بہت بڑی. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ایمان والوں کو کہ دیکھو، دن ایک جیسے نہیں رہتے. اگر آج تم ستائے جا رہے ہو تو اس کے پیچھے اپنا دین ایمان نہ کھو دینا، کیونکہ ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو مسلمانوں کو ستاتے ہیں اور جو مسلمانوں کے در پہ رہتے ہیں، جو ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا دے گا. تو ہمارے لیے بہت زیادہ اس کے اندر لیسن ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اس راستے میں جو اللہ کے دین کا راستہ ہے، اس میں لازمن مشکلات آئیں گی، لازمن تکلیفیں آئیں گی. گھبرانا نہیں ہے ان سے، اور اس کے لیے ریڈی رہنا ہے، کیونکہ پہلے لوگوں کے اوپر بھی مشکلات آئیں تھیں اور ہم سے بھی زیادہ آئیں تھیں، لیکن انہوں نے صبر کیا تھا. تو یہ سورت ایمان کو بڑھا دیتی ہے، اور جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کا ایمان نیچے جا رہا ہے، جب بھی آپ کو یہ لگے کہ مشکلات آ رہی ہیں اللہ کے راستے میں، تو اس سورت کو پڑھ لیجیے. یہ نہیں کہ یہ کوئی وظیفہ ہے، مگر اس سورت سے آپ کو تسلی ملے گی، اور ان لوگوں کی اگزامپل آپ کے سامنے آئے گی جو آپ سے بہت زیادہ مشکلات گزار چکے ہیں. اس سورت کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں آپ نے اس سورت کی تلاوت کی، اور سورت طارق کی جو اگلی ہے. اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں یہ سورت البروج اور اگلی سورت الطارق پڑھا کرتے تھے. تو ہم بھی چونکہ اس چیز کو اکثر لوگ ہم میں سے حفظ کر چکے، تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی کم از کم ظہر اور عصر میں ان دو سورتوں کو پکڑ لیں کہ ہم نے ان کو پڑھنا ہے. اس سے ہمیں سنت پہ عمل کرنے کا اجر بھی مل جائے گا، اور یہ دہرائی بھی ہو جائے گی، کیونکہ اب ہم انشاءاللہ ان سورتوں کو سمجھ لیں گے، تو ہمیں ایک حوصلہ ملے گا اللہ کے راستے میں چلنے پہ. تو دیکھتے ہیں اس سورت کو، چونکہ اس کے سارے الفاظ بہت ہی آسان ہیں، تو لہٰذا میں ساتھ ساتھ ہی ان کی تشریح آپ کے سامنے رکھتی جاؤں. پہلے تو سورت البروج بروج سے ہے، یہ پہلی اس کے آیت میں لفظ البروج ہے، اس سے ہے. تو دیکھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء، قسم آسمان کی. ذات، ذات جو یعنی والا. البروج، برجوں، برجوں والے آسمان کی قسم. برج کیا چیز ہوتی ہے؟ برج، یا آپ نے اپنے اردو میں بھی یہ لفظ سنا ہوگا، برج ہے اس جگہ کے، یا برج خلیفہ آپ نے تو سنا ہوگا، دبئی میں ہے. तो क्या चीज है जो उसमें सिग्निफिकेंट है? एक्चुअली टॉल बिल्डिंग है ना, हाई राइजेस जिसको कहेंगे। तो बुर्ज असल में वो चीज होती है जो बहुत प्रोमिनेंट हो, इसी वजह से टावर्स के लिए या किलों के लिए बुर्ज का लफ्ज आता है। इसी तरह जो औरत अपने पर्दे को उतार दे और अपने यानी अपने आप को नुमाया करे, अपने हुसन को नुमाया करे, तो उसको भी तबर्रुज कहते हैं, क्योंकि उसने अपने आप को नुमाया किया। तो वो जो बहुत प्रोमिनेंट चीज होती है, वो ऊंची चीज भी प्रोमिनेंट होती है। तो इसी से फिर ये सितारों के लिए आता है, जो बड़े बड़े सितारे हैं आसमान में। और मुजाहिद फरमाते हैं कि बुरूज वो हैं जिनमें हिफाजत करने वाले रहते हैं, यानी फरिश्ते, जो गार्ड फरिश्ते हैं, जो आसमानों को गार्ड करते हैं, जो उनकी चौकियां हैं, जहां पे उनकी ड्यूटी लगी हुई है कि शयातीन आसमान के करीब ना आए, तो वहां पे इन बुर्जों के अंदर ये फरिश्ते अपने मतलब पूरी तरह तैयार रहते हैं, और जो ही कोई शैतान इसके करीब आना चाहता है तो उस वक्त उसको वहां से शहाबे साकिब मारते हैं। तो आसमान जो बुर्जों वाला है, अच्छा इसी बुर्ज से फिर आप देखें कि जो ये जो हॉरोस्कोप्स वगैरह करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये बुर्ज फला है, बुर्ज जो भी इनके नाम है, इतना मुझे आते नहीं है, जो असद और मीजान और पता नहीं क्या इस तरह से। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इस्लाम में अलाउड नहीं है, बल्कि इनके ऊपर जो ईमान रखेगा इल्मे नजूम के ऊपर, तो उसके लिए बहुत बड़ी वईद है। 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती जो काहिनों के पास जाए और उनकी बात को माने भी और उसकी तस्दीक करे कि हाँ भाई ये तो इसने कहा था और ये ऐसा ही निकला। तो उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मैं लेकर आया हूँ वो उसका इनकार करने वाला है, यानी ये हॉरोस्कोप्स को जानना या ये इल्मे नजूम को सीखना या ये काहिनों का यानी जो फॉर्च्यून टेलर्स होते थे या आज भी यही लोग काहिन हैं, ये इनका मशवला होता है। ये किसी मोमिन को जेब नहीं देता कि वो इन चीजों के ऊपर ईमान रखे, क्योंकि जो भी है वो अल्लाह ताला की कदर से होता है। हम सितारों को ये नहीं कहते सितारे की ये फलां चाल या फलां चीज की वजह से ये हुआ। तो लिहाजा इन चीजों के ऊपर ईमान रखना इंसान को कुफर तक पहुंचा सकता है, इसलिए इनसे बहुत दूर रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे कसम खाई, आप देखें पीछे भी कसम आई आसमान की, मगर यहाँ पे एक डिफरेंट तरीके से कसम खाई गई। पहले तो कयामत की कसम थी और यहाँ पे वस्समा, यहाँ पे आसमान के फटने की नहीं है, उसकी निशानी की नहीं है जो कयामत की निशानी की पहले आप देख चुके हैं। यहाँ पे है ज़ातिल बुरूज, बुर्जों वाले आसमान की कसम है, वल यौमिल मौऊद, और कसम है, कसम किस दिन की? उस दिन जो मौऊद है, जो वादा किया गया है, जिसके वादा वाइंदाल से वादा भी इसी से मौऊद, जिसका वादा किया गया, तो उस दिन की कसम खाई गई। वो कौन सा दिन है जिसका वादा अल्लाह ताला ने किया कि ये आने वाला जरूर? वो कयामत का दिन है, जिसकी हम बार बार पीछे बात भी पढ़ चुके हैं। और जब कसम खाई जाती है तो वो चीज जिसकी कसम खाई जाती है वो उसको भी गवाह बनाया जाता है, और उसकी अहमियत भी हमारे सामने वाजे होती है कि वो चीज कोई अहम ही चीज है जिसकी अल्लाह ताला ने कसम उठाई है, अल्लाह ताला के नजदीक वो अहम चीज है। तो आसमान की और बुर्जों वाले आसमान की बहुत बड़े बड़े बुर्ज हैं इसके अंदर, वो बड़े बड़े सितारे हैं जिनको बुरूज कहा गया, उनकी कसम अल्लाह ताला ने खाई है, जिन तक आज तक इंसान पहुंच ही नहीं सका, सिर्फ थोड़ा बहुत उनके बारे में जान सका। और कसम है वादा किए गए दिन की, और व शाहिदिन हुआ मशहूद, और शाहिद वो होता है जो गवाह भी होता है और देखने वाले को भी कहते हैं, यानी अब देखे जो देखेगा वही गवाह भी होगा ना, वरना तो गवाही दी ही नहीं जा सकती अगर कोई चीज देखी ना हो। तो शाहिद की भी कसम, गवाह की भी कसम, और जिस चीज के ऊपर मशहूद वो चीज है जिसके ऊपर वो गवाही देगा, ठीक है? तो मसलन है कि जैसे अल्लाह ताला शाहिद है, गवाह है, और मशहूद क्या है? हर चीज, उसकी सारी कायनात मशहूर है क्योंकि उसकी नजर हर चीज पे। तो सबसे बड़ा गवाह और सबसे बड़ा देखने वाला तो अल्लाह ताला खुद है, और मशहूर है सारी चीजें जिनको देखा जा रहा है, जिनको वो जो जो उसकी नजर में है। और ये भी कि इसके बारे में, शाहिद और मशहूद के बारे में बहुत सारे अकवाल हमें मिलते हैं। इतने सारे अकवाल हैं जो पूरे हम यानी मेंशन भी करना मुश्किल है, क्योंकि कोई 25-30 अकवाल इसके बारे में है। और क्योंकि बहुत सारी चीजें शाहिद है ना, और मशहूद उसके मुताबिक हर चीज जो जो देखने वाला होगा वो किसी चीज को ही देख रहा होगा ना, तो देखने वाला शाहिद कहलाए और जिस चीज को वो देख रहा है वो मशहूद कहलाए। ठीक है, तो इसके मुताबिक फिर एक तो ये कौल है कि जुमे का दिन शाहिद है। क्यों? इसलिए कि वो देखता है, वो उस दिन कयामत के दिन गवाही देगा कि इस दिन हम खास खास कुछ इबादत करते हैं, बाकी दिनों में नहीं वो करते। तो ये दिन भी गवाही देगा कि इस बंदे ने इस दिन में क्या क्या किया। सुबहान अल्लाह, क्या आप जुमे के दिन को स्पेशल करते हैं? कोई ऐसी स्पेशल चीज आप करते हैं कि जुमे के दिन जो खास है, मसलन दुरूद शरीफ पढ़ना, मसलन जुमे की नमाज पढ़ना, मसलन दुआएं करना, और इस दिन को स्पेशल इबादत के लिए मुख्तस करना कि इस दिन खास खास ये इबादत की जा रही है जो बाकी दिनों में उस तरह से नहीं होती, तो ये शहादत देगा। ये हमारे लिए बहुत अहम दिन है, खजाने की तरह है हमारे लिए, क्योंकि ये खजाना समझ ले हमें मिल गया कि हमें जुमे का दिन मिल गया, और इसीलिए हम इस दिन अपनी ज्यादा इबादत की तरफ फोकस करें, ज्यादा जिक्र अजकार करें, ज्यादा अल्लाह ताला की बात करें इस दिन के अंदर, क्योंकि ये ही दिन हमारी गवाही का दिन है, ये गवाह है दिन। और मशहूद कहा गया रिवायात में कि आरफा का दिन है, क्योंकि उसको देखने के लिए लोग जाते हैं, यानी उसको उसके लिए जमा होते हैं उस दिन। और इसी तरह कयामत के दिन के बारे में कहा गया वो शाहिद है, और मशहूद क्या है? जो भी उस दिन चल रहा होगा उसको ये दिन देखेगा ना, तो वो मशहूद है। इसी तरह सारी कायनात को कहा गया ये शाहिद है, ये शाहिद है इस चीज के ऊपर। जो मशहूद है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, क्योंकि सारी कायनात इस चीज को देख रही है। और इसी तरह फिर जो अरब में लोग थे, सफर करते थे, वो तबाहशुदा बस्तियां देखते थे, तो वो शाहिद थे, और ये तबाहशुदा बस्तियां जो थी वो मशहूद थी। इसी तरह आप देखें फरिश्ते शाहिद हैं किस चीज पे? हमारे आमाल पे, क्योंकि वो देख रहे हैं हमारे आमाल और लिख रहे हैं, तो हमारे आमाल मशहूद हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिद, और जिब्राइल अलैहि सलाम मशहूद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा था ना, पूरे उफक पे उनके पार थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए थे उनको उनकी असली हालत में देख के। इसी तरह वक्त शाहिद है, वक्त भी शाहिद है, कुछ तो देख रहा है ना। वाले आसर, असर के वक्त की कसम, तो जब कसम खाई जाती तो वो चीज भी गवाह होती। तो वक्त भी शाहिद है किस चीज पे? जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं उस पे, जो भी हो रहा है यहाँ पे उसके ऊपर ना हुआ। यानी इंसान मशहूद है। फिर इसी तरह हमारे जो ये जवारे हैं, हमारे आजा हैं, ये शाहिद है। हमारी स्किन शाहिद है, हमारी हाथ पैर, ये आंखें, ये कान, ये शाहिद है। क्यों? इस दिन ये गवाही देंगे ना किस चीज के ऊपर? हमारे आमाल के ऊपर, कि मेरे से ये करता था, आंखें कहेंगी मुझसे ये देखता था, कान कहेंगे मुझसे ये सुना, हाथ कहेंगे मुझसे ये काम लिए इसने, पैर कहेंगे यहाँ यहाँ चल के गया। अल्लाह अकबर। और आपको पता है ना, सूरह निसा की आयत सुन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े थे, जिसमें ये था कि ए नबी, हम आपको उस दिन गवाह बनाएंगे आपकी उम्मत के ऊपर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिद होंगे और आपकी उम्मत मशहूद होगी, और इसी तरह आप दूसरी उम्मतों पे भी शाहिद होंगे जो दूसरी उम्मतों तक उनके पैगंबरों ने पैगाम पहुंचा दिया था। और इसी तरह ये उम्मत मुस्लिमा शाहिद होगी और मशहूद होंगी दूसरी उम्मतें। और इसी तरह ये जमीन शाहिद है और मशहूद जो कुछ इसके ऊपर हो रहा है, जमीन गवाही देगी ना हमारे आमाल की। आसमान शाहिद है, जो कुछ इसके नीचे हो रहा है वो मशहूद। अल्लाह अकबर। तो आप देखें कि हर चीज को आप देख लें, कोई ना कोई चीज किसी चीज के ऊपर गवाह है। ये हमारे दरो दीवार शाहिद है और हमारे आमाल मशहूद है। इनको ये देख रहे हैं, ये ना सोचे कि इनको कुछ पता नहीं चलता। अल्लाह अकबर। तो बहुत सारी इससे चीजें मुराद ली गई, और सभी मुराद हो सकती। कुतिला अस्हाबुल उखदूद। अब यहां पर किस चीज के ऊपर कसम खाई जा रही है? बाज कहते हैं कि कसम यहाँ पे महजूफ है, यानी आप खुद ही समझ लो कि कयामत का दिन आने वाला है, जिसकी बार बार पीछे बात की गई। और बाज कहते हैं कि आगे जो बात है, इन लदीना फतल मुमिनीना वल मुमिनात आयत 10, उसके ऊपर कसम खाई गई। तो कुतिला अस्हाबुल उखदूद, या कि इस बात के ऊपर कसम खाई गई कि मारे गए। कुतिला यहाँ पे लुईना के माने में है, कि लानत है इनके ऊपर। कुतिला पहले भी आया था ये लफ्ज, एक बद्दुआया कलिमा है। मारे गए, हलाक हो गए, तबाह हो गए अस्हाबुल उखदूद, खंदकों वाले, जिन्होंने खंदके खोदी थी। ये नहीं कि जिन्होंने जो खंदकों में पड़े, बल्कि जिन्होंने खंदके खोदी वो लोग तबाह हो गए, वो मारे गए। अब इसके पीछे जो एक वाकया हमें मुस्लिम में और मुस्नद अहमद में मिलता है, बहुत मुख्तसर आपके सामने रखती हूँ कि एक बादशाह था, उसका एक जादूगर था। जब वो बूढ़ा हो गया तो जादूगर ने कहा, मुझे एक ऐसा बच्चा दे दो जो कि जरा आप जहीन हो, ताकि मैं उसको तालीम दूँ और वो फिर आगे मेरी ये लेगेसी लेके चले। तो एक बच्चा देखा गया जो कि बहुत जहीन था, उसको जादूगर ने जादू सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन जो बच्चा जिस रास्ते से जादूगर के घर जाता था, उस रास्ते में एक राहिब का घर पड़ता था। वो राहिब वगैरह उस वक्त वो क्रिश्चियन होते थे, तो वो राहिब वाज करता था, लोगों को नसीहत करता था। ये बच्चा खड़ा सुनता रहता था, हत्ता कि उसने राहिब से बहुत कुछ सीख लिया। और इतना कुछ सीख लिया कि फिर एक दफा वो बच्चा जा रहा था, और उसने यानी एक जानवर को पत्थर से हलाक कर दिया, और लोगों को उससे निजात मिल गई, जो खूनखार जानवर था। इस तरह बच्चे की ये बात और लोगों में मशहूर होने शुरू हो गई। और बादशाह का एक नाबीना वजीर था, उसको भी इस बच्चे ने अल्लाह ताला का नाम लेके उसको उसके हाथ में, यानी अल्लाह ताला ने शिफा रख दी थी, तो उसकी बीनाई वापस आ गई। ये बात अब बादशाह तक जब पहुंच गई तो बादशाह उसके खिलाफ हो गया, क्योंकि वो उस जमाने में ये होता था कि बादशाह अपने आप को खुद खुदा कहते थे। तो उसने कहा कि मैं हूं तेरा रब, तो बच्चे ने कहा कि नहीं, तू मेरा रब नहीं है। बादशाह ने कहा कि तू इसको जाके पहाड़ से गिरा दो। तो पहाड़ से गिराने के लिए उसके सिपाही लेकर गए, लेकिन वो खुद ही गिर गए वहां से, क्योंकि बच्चे ने एक दुआ की, अल्लाहुम अक्फिनीहिम बिमा शिता। ये दुआ बहुत ही ज्यादा जबरदस्त दुआ है कि अल्लाह जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे निजात दे। और ये दुआ हमें पढ़नी चाहिए किसी भी दुश्मन के मुकाबले में, ठीक है। और फिर इसी तरह उन्होंने बहुत हीले किए, बहुत तरीके किए, लेकिन किसी तरह भी वो बच्चे को हलाक ना कर सके। डुबोना भी चाहा पानी में, लेकिन खुद डूब गए। लेकिन हत्ता के बादशाह तंग आ गया, तो बच्चे ने कहा, मुझे एक तरीका पता है, तुम उस तरीके से मुझे मारोगे तो फिर मैं मर जाऊंगा। और वो ये है कि तुम कहना मुझे मारने से पहले, बिस्मिल्लाह रब्बी हादल गुलाम, कि अल्लाह के नाम पे जो रब है इस गुलाम का, इस बच्चे का, तो फिर देखना कि मैं मर जाऊंगा। तो बादशाह ने लोगों को जमा किया और तीर चलाने से पहले यही कहा, और फिर जब बच्चे को मारा गया तो वो शहीद हो गया। जब लोगों ने ये देखा तो उनको यकीन हो गया कि ये बच्चा सच्चा था, और वो सब तरफ से आवाजें आने लगी कि हम इस बच्चे के रब पर ईमान ला चुके। ये हाल देखकर वो बादशाह तो घबरा गया, और उसने कहा, ये क्या हो गया, ये तो उल्टा ही हो गया। बजाय इसके कि एक बच्चा था जो मेरे पर ईमान लाने से बाज आया था, और कहां ये कि इतना मजमा ईमान ले आया। तो उसने कहा कि अब इसका यही हाल है कि खंदके खोदी जाएं और उसके अंदर लकड़ियां भर दो, जिनमें आग लगा दो, और जो मेरे दीन से इनकार करेगा, मेरा इनकार करेगा, उसको आग में डाल दो। उस वक्त के वो जो लोग थे, उनके सबर और जब्त एक कितनी बड़ी मिसाल था, कि उन्होंने आग में जलना कबूल कर लिया, कूद कूद के आग में गिरने लगे, लेकिन उन्होंने दीन इस्लाम नहीं छोड़ा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से भी बहुत पहले की बात है ये वाकया। और इस्लाम आपको पता है ना, वो दीन आदम अलैहि सलाम से लेकर कयामत तक जो भी तौहीद का दीन है वो इस्लाम ही है। तो उस वक्त एक औरत थी जिसकी गोद में दूध पीता छोटा सा बच्चा था, वो जरा हिचकिचाई
क्योंकि वो बच्चों को भी डाल रहे थे, औरतों को, बूढ़ों को, किसी को नहीं उन्होंने छोड़ा था। तो उस वक्त वो थोड़ा हिचकिचाई कि उसके गोद में दूध पीता बच्चा था, तो बच्चे को अल्लाह ताला ने बोलने की ताकत दे दी। तीन बच्चे जो बोले हैं उनके अंदर ये एक बच्चा है, एक जुरैज के लिए जो बोला था और एक ईसा अलैहि सलाम बोले और एक ये बच्चा बोला। उसने कहा अम्मा क्या कर रही हो तुम, तो हक पे हो, सबर करो और इसमें कूद पड़ो। तो वो माँ भी कूद गई बच्चे समेत। तो ये नौजवान जो था, ये जो शहीद हुए, तो हजरत उमर के जमाने में इन्हीं की एक एक जगह कब्र खोदी गई, तो इनकी कब्र से इनको निकाला गया था और इनकी उंगली इनकी कनपट्टी पे ही रखी हुई थी, जिस तरह बवक्ते शहादत रखी थी उसी तरह। सुभान अल्लाह, और वैसे के वैसे थे ये। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इस तरह अपने प्यारों की मदद फरमाता है और इस तरह से उनको प्रिजर्व कर देता है। तो कुतिला असहाबुल उखदूद, मारे गए खंदकों वाले, ये गड़े वाले जिन्होंने ऐसा किया, अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐलान कर दिया और इस तरह से ईमान वालों को एक तसल्ली दे दी कि याद रखो जिन लोगों ने भी ईमान वालों को सताया वो कहीं भाग के नहीं जा सकते। वो जिन्होंने अन्नारी दातिल वकूद, जिन्होंने आग जलाई थी, आग थी जात, मैंने आपको बताया वाली या वाला, अल वकूद ईंधन, ईंधन वाली जो आग जलाई थी कि उसमें अखदूद। अच्छा ये याद रखे, अखदूद जो है ना ये जमा नहीं है, ये वाहिद है। और जो नार जो ईंधन वाली, इज हुम अलैहा कुऊद, जब वो उस पर बैठे हुए थे, ये सारा उनका वाक्या बताया जा रहा है जी, किस तरह से वो सीन हो रहा था वहां पर कि वो उस आग के ऊपर बैठे हुए थे। अब यहाँ पे बाज ने ये माना लिया कि आग के ऊपर, अलैहा का माना ये है कि वो आग पे बैठे हुए थे, यानी वो आग के ऊपर ही थे, यानी वो भी आग में गिर गए, इतनी बड़ी आग थी कि वो बैठे थे, करीब थे तो इसलिए। लेकिन बाज ने कहा नहीं, आला का माना ये कि वो उसके करीब ही थे तो इसलिए आला कहा गया। अच्छा आप देखिए ना, वैसे तो ऐसे होता है कि ठीक है एक हुक्म दे दिया गया और वो सिपाही कर रहे हैं या कुछ है, लेकिन ये लोग खुद बैठे हुए थे, किस लिए बैठे हुए थे आग पे, वहुम आला मा यफालूना बिल मुमिनीना शुहूद, और वो खुद उसके ऊपर थे, और वहुम आला और वो ऊपर मा यफालूना जो वो कर रहे थे, बिल मुमिनीना मोमिनों के साथ शुहूद हाजिर थे। अब यहां से भी हमें शाहिद व मशहूद की बात पता चल गई, ये उस दिन शाहिद थे और मशहूद क्या था, वो मोमिन जो जल रहे थे आग में, ये बैठ के उनका तमाशा देख रहे थे। यहां पर आप देखें यफालूना आया, यामलूना नहीं आया, यामलूना अमल से है और यफालूना फेल से है। तो अमल और फेल में थोड़ा सा फर्क है। फेल जो है वो बगैर सोचे समझे इंसान जो करते, जैसे कि किसी के नाक पे मक्खी बैठी तो वो बगैर सोचे समझे ऐसे हाथ से उड़ाना शुरू कर देना, उसके लिए वो कोई नियत नहीं करता। लेकिन जो फेल है, जो अमल है, उसके अंदर नियत होती है। तो वहुम अलामा यफालूना बिल मुमिनीना शुहूद, तो वो उस पर जो वो कर रहे थे मोमिनों के साथ, वो हाजिर थे उसके ऊपर, वो उसके ऊपर गवाह थे, वो उसके ऊपर बैठे हुए थे और ये सारा नजारा देख रहे थे। अल्लाह अकबर, हत्ता कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को भी गिरते हुए देखा। अब हम आज सोचते हैं ना, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे हालात आते हैं जिनको हम सोचते हैं ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो फिर तो उनके साथ तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं। और बाज लोग तो अपने ईमान में ही शक करने लगते हैं और अपने ईमान को ही अल्लाह ताला माफ करे उससे ही फिर जाते हैं कि ये हो क्यों रहा है जुल्म जो दुनिया में हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये तो दीन ही सही नहीं है। तो आपको कुरान ही बताता है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप ईमान लेकर आए तो आपकी कोई इम्तिहान ही नहीं होगा, और आपके साथ ये पहली दफा हो रहा है या कभी ऐसा तो हुआ ही नहीं, ये क्या हो गया, इतनी अचंभे की ये बात नहीं है, क्योंकि इस तरह तो होता रहा है। इसका क्या मकाम है, ये कैसे पता चलेगा, ये तो इम्तिहान से ही पता चलता है कि कौन क्या है। इम्तिहान ना हो तो पता क्या चलेगा खोटे का और खरे का। और अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया हमें, आप देखें आ, 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 पहले भी हम पढ़ चुके हैं, अम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्नत, क्या तुम ये समझते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे जबकि अल्लाह ताला ने तुम्हें आजमाया ही नहीं, उससे जो तुमसे पहले लोगों के ऊपर गुजरा उनके ऊपर तो इससे भी ज्यादा मसाइब गुजरे, हत्ता कि एक दफा हजरत खब्बाब जिनको कोयलों पे लिटाया जाता था, और कोयले कैसे बुझते थे, उनकी जो कमर की चर्बी पिघलती थी उससे कोयले बुझते थे, और वो इस जुल्म व सितम को सहने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त काबे के साथ टेक लगाए हुए थे, तो आके फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये आप अल्लाह से हमारे लिए दुआ नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए हुए थे, सीधे होके बैठ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अभी से तंग पड़ गए, तुमसे पहले लोगों के ऊपर तो इससे भी ज्यादा मुसीबतें गुजरी। वो जब ईमान लाते थे तो उनके साथ ये कुछ सलूक होता था कि उनके जिस्मों में लोहे की कंघियां चला दी जाती थी, उनमें से एक को जमीन में गाड़ दिया जाता था, उसके सर के बीच में आरा रख के चीर दिया जाता था। उनके साथ क्या कुछ नहीं होता था, लेकिन वो फिर भी साबित कदम रहे। तो अल्लाह ताला आजमाता है। अल्लाह ताला ने सूरह अनकबूत में फरमाया ना, अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। तो क्या लोगों ने ये समझ लिया कि वो ऐसे ही छोड़ दे दिए जाएंगे कि जब वो कह देंगे हम ईमान लेकर आए और उनका इम्तिहान नहीं होगा? बिल्कुल, यानी इम्तिहान होगा, जरूर इम्तिहान होगा। लोग क्या समझते हैं कि इनका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा? आज भी इम्तिहान हो रहा है, लेकिन हम लोग समझते नहीं है इस इम्तिहान को। किसी को दिखा के उसका इम्तिहान लिया जा रहा है, किसी को इम्तिहान में डाल के इम्तिहान हो रहा है, किसी को दे के अल्लाह ताला आजमा रहा है, किसी से ले के अल्लाह ताला आजमा रहा है, लेकिन इम्तिहान सबके हो रहे हैं और मुख्तलिफ हालतों में ईमान हो रहे हैं। और जिसका इम्तिहान हो रहा है, जिसका ईमान जितना ज्यादा हो उसका इम्तिहान उतना ही ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि अंबिया के ऊपर सबसे बड़े इम्तिहान आए। तो कभी ये ना सोचें कि इस चीज के ऊपर शक करने लगे कि पता नहीं ये दीन सच्चा भी है कि नहीं। अगर सच्चा होता तो फिर हमारे पर ये क्यों होता और दुनिया में ऐसे क्यों हो रहा है? क्या पहलों के साथ नहीं हुआ? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मसाइब नहीं आए? अल्लाह तुम्हें आजमाएगा, अल्लाह ताला तुम्हें देखेगा, अल्लाह ताला तुम्हें जांचेगा। ऐसे ही तो नहीं जन्नत के काबिल बन जाओगे ना। जन्नत बड़ी अजीम जगह है, बड़ी बुलंद जगह है। अगर तुम जन्नत के बासी बनना चाहते हो तो इम्तिहानों की भट्टी से गुजरना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कौन खरा और कौन खोटा। पता तो चले ना कि कौन मुंह से ऐसे ही बोल रहा है मैं ईमान लेकर आया अल्लाह पर, आखरत पर, इस पर, इस पर, और कौन है जो वाकई जिसके दिल में ईमान है। क्योंकि जो मुंह से बोलने वाला है वो तो जरा सी आजमाइश के ऊपर भाग निकलेगा, और जिसके दिल में ईमान है वो जानता है कि ये जिंदगी आरजी है, आज नहीं तो कल यहां से चले जाना है, और असल हमारा ठिकाना तो जन्नत है। हम तो जन्नत के चाहने वाले हैं, हम तो उसके तालिब हैं। ये तो छोटे छोटे इम्तिहान है इस दुनिया के, उन्होंने जाने भी दे दी लेकिन दीन को ना छोड़ा। आज अपने आप को इस तनाजुर में रख के देखें, हम कौन कौन सी बातों के ऊपर दीन पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम किस किस वक्त में खड़े हो जाते हैं दीन को छोड़ने के लिए कि अब किसी ने मजाक उड़ा दिया, छोड़ो इस चीज को, इसकी वजह से मजाक उड़ाया, हिजाब की वजह से, हिजाब को छोड़ो। किसी ने ताना दे दिया इस्लाम का तो इस्लाम को छोड़ दो। किसी ने थोड़ी सी बात कर दी, तुम्हारे तो दीन के अंदर देखो लौंडियों के साथ ऐसा करने के ऊपर जायज करार दिया गया, तो दीन को ही छोड़ दो। हमें तो अभी से वो शकु को शुभात होने लगे, ये कैसा दीन है, ये कौन सा ईमान है जो छोटी छोटी बातों के ऊपर ही चला जाता है, ये कौन कैसा ईमान है कि जो जरा से किसी ने कोई शक वाली बात कह दी तो ईमान डगमगाने लगा, शकु को शुभात आने लगे। कैसा ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात कह देता है तो हम भी सोच में पड़ जाएं कि हाँ वाकई ये तो ऐसी है बात, किस किस्म का ईमान है? इसलिए कि ईमान अंदर है ही नहीं, ऊपर ऊपर है सिर्फ जुबान की हद तक, दिल में रासिख नहीं हुआ, गड़ा नहीं हुआ। देखें जो चीजें गड़ी होती है ना, ये दरख्त जो कितने तनावर होते हैं उनकी जड़ें कितनी मजबूत होती, आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, उनको कुछ नहीं होता, लेकिन जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ऊपर ऊपर ही होते हैं, वो उड़ के कहीं पहुंच जाते हैं। इसी तरह पहाड़ देखें, गड़े में जमीन के अंदर तक उनकी जड़ें, क्या मजाल है आंधियों तूफानों की, कभी ये पहाड़ हिल जाए? तो जब ईमान अंदर है ही नहीं या इतना कमजोर है कि बस ऊपर ऊपर है, शैलो है बिल्कुल, तो वो उस पौधे की तरह जिसके पास जड़ें नहीं है, बस ऊपर ऊपर नजर आता है। ये नजर आने वाला ईमान ये इस काबिल नहीं है कि जन्नत तक पहुंचा सके या कयामत में निजात दिला सके। इसको मजबूत होना है, इसकी जड़ें अंदर तक जानी चाहिए। क्या बात है कि वो लोग अपनी जानें भी देने के लिए तैयार हो गए, अपनी औलादों के साथ, बूढ़े बच्चे आग में उनको डाल दिया गया, मगर वो ईमान से नहीं हटे, वो भी बाज आ सकते थे। और ये उस वक्त उतरी आयात जिस वक्त मक्का में प्रोसिक्यूशन जोरों पे थी और मुसलमानों को अजियतों पे अजियतें दी जा रही थी। इतना टॉर्चर था कि इंसान सुनता भी है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या बात है कि वो उसको बर्दाश्त कर लेते थे और ईमान को नहीं गिव अप करते थे। और क्या बात है कि हम हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए पहले खड़े होते। वो चीज अभी हम तक पहुंची नहीं होती, हम एक वाकया ही सुनते, सुना है फलां जगह पे ऐसे हो गया एक मुसलमान के साथ, सुना है कि मुसलमानों को एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सुना है कि ऐसे, अब फौरन अपने नाम ऐसे रख लिए जो बिल्कुल ऐसे हो कि पता ही ना चले कि मुसलमान है कि नहीं, क्योंकि हम वो नाम भी नहीं रखना चाहते जो हमारी शनाख्त बता दे कि हम मुसलमान। क्योंकि कई नाम ऐसे हैं कि किसी कोई भी देखेगा मोहम्मद नाम ऐसा है, किसी गैर मुस्लिम का हो ही नहीं सकता। लोग घबराने लगे, ये नाम रख लिया तो पता चल जाए, अहमद नाम ना रखो, मोहम्मद नाम ना रखो, अब्दुल्ला नाम ना रखो, ऐसे नाम ना रखो जिससे हमारी पहचान हो जाए, ऐसे नाम रख लो जो इनके भी हैं और हमारे भी, कि पता ही ना चले, अपना हाल हुलिया भी ऐसा बना लो कि पता ही ना चले, कोई बात भी ऐसी ना करो कि पता चले कि मुसलमान है, जुबान से भी कोई ऐसा कलमा ना निकले, बस इतने ब्लेंडिन हो जाओ कि कोई पता ही ना चले कि कौन क्या है। खुद सोचे हम कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हम किधर किधर गिव अप कर रहे हैं, हमारे अंदर कितनी कुव्वत है सहने की। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप अपनी जानें दे दें, यहां तक इस्लाम ने इजाजत दी है कि अगर जान देने का वक्त आए तो तुम्हारे लिए इजाजत है कि तुम उस वक्त अपनी जुबान से उनके लिए कोई कलमा कुफर कह सकते हो और उसे जान बचा सकते हो तो बचा लो। लेकिन हम तो बहुत छोटी छोटी बातों पे ही गिव अप कर देते। हजरत अम्मार को जब तशद्दुद किया गया तो उन्होंने कह दिया था, लेकिन आपसे सलम ने फरमाया अपने दिल में तो तुम देखो, अगर दिल में है ईमान तो ठीक है, लेकिन वो जान जाने का खतरा तक हो गया था। ऐसे नहीं कि छोटी छोटी बातों पे, जॉब नहीं मिल रही वो इसीलिए नहीं मिल रही होगी क्योंकि वो मुझे मुसलमान, खुद ही अपने जहन में सोच लेते हैं वो इसी वजह से नहीं मिल रही होगी क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, लिहाजा जॉब की खातिर तो हम ये कर लेते हैं, हम अपने आप को मुसलमान ही जाहिर ना करें या किसी हमारी चीज से पता ना चले कि हम मुसलमान। तो हम तो ऐसे ही इस्लाम को अपने से दूर हटाते हैं, जैसे किसी ने कपड़े पहने हो ना तो कपड़े चेंज कर लेता वो बाहर जाने से पहले, इसी तरह हम घर के अंदर मुसलमान और घर से बाहर, हम वो कपड़े उतार के घर में ही चले जाते हैं, कुछ और चेंज करके पहन के कुछ और चलेगा जिससे हमारी शनाख्त ना हो पाए, क्योंकि हम अपनी शनाख्त भी एज अ मुस्लिम करवाने से डरते हैं। वो क्या जज्बे होंगे आप किसी वक्त इमेजिन तो करके देखें कि आग लगी हुई है और अभी तक कहा जाता है कि उस जगह का पर अभी तक ट्रेसेस हैं जहां पे ये आग की खंदकें खोदी गई थी, ऐसी गहरी खंदकें जिनमें आग लगी हुई है और आग में डाला जा रहा है। आपको पता है दीन इस्लाम के अंदर आग में डाला जाना, किसी को भी ये सजा देना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना फरमाया कि किसी को भी आग से जला के सजा ना दी जाए, क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह ताला कर सकता है, किसी को ये जायज नहीं है कि वो किसी को आग की सजा दे। इसी से हमें पता चलता है कि वो जो भी ऐसे यानी असलहे हैं, ऐसे बम हैं जो आग वाले हैं, जो आग लगा देते हैं और जिससे लोग जल जाएं, ये भी हराम है। और हमने देखा है कि ऐसी ऐसी मनाजिर हमने देखे हैं कि आग में लोग जल रहे हैं, आग लग गई है और बाहर लोग चीख रहे हैं और अंदर लोग जल रहे हैं और कोई निकाल भी नहीं पा रहा उनको, आपने भी देखे होंगे। वो ऐसा असलहा भी गलत है। तो आग का अजाब सिर्फ अल्लाह ताला दे सकता है, कोई किसी को नहीं दे। उस मंजर को इमेजिन कीजिए और फिर सोचिए कि छोटे छोटे बच्चे ये इसी आसमान ने देखा हुआ है और इसी जमीन पे हुआ हुआ है। हम भूल जाते हैं लेकिन अल्लाह ताला नहीं भूलता, फरमाया वमा नकमु मिनहुम, और उनको नाराज नहीं थे वो। नकमु का मतलब होता है, नकमा कहते हैं किसी चीज की कराहत, किसी चीज के ऊपर गुस्सा करना, किसी चीज से बिगड़ना, किसी चीज से नाराज होना, किसी को सजा देना या किसी से चीज से नफरत करना, तो उनकी नफरत और किसी बात से नहीं थी, इल्ला युमिनु बिल्लाहिल अजीजिल हमीद, सिवाय इसके कि ये लोग अल्लाह पर जो अजीज है और हमीद है उसके ऊपर ईमान रखने वाले थे। यानी इनको और कोई प्रॉब्लम नहीं था, इनको और कोई मसला नहीं था, सिर्फ मसला क्या था कि ये अल्लाह पर ईमान क्यों लेकर आए जो अजीज और हमीद है। यानी कोई उनको दुनियावी कोई मसला नहीं था, कोई उनको कुछ और इनसे चाहिए नहीं था, सिर्फ इनका ईमान चाहिए था। याद रखिए ये सूरत इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आगे आगे वो जो फितने आ रहे हैं ना, जो फितने हमारे घरों पे बारिश के कतरों की तरह गिर रहे हैं, उनमें ईमान ही तो जाता है, ईमान के लुटेरे हैं आज। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, और फितना दिज्जाल भी सबसे बड़ा ईमान का ही तो फितना है, ईमान की आजमाइश है। और आज आप ये ना सोचें कि अगर कोई मुसीबत आएगी आग के घड़े होंगे तो वही आजमाइश है, नहीं, छोटी छोटी चीजें भी आजमाइश बन जाती। किसी ने आपको रोक लिया इस वजह से कि आप मुसलमान हैं, किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी ने गाली दे दी, किसी ने कोई ताना सुना दिया, किसी ने कोई बुरा भला कह दिया, ये भी तो आजमाइशें हैं। इसी तरह आपको, अगर आप गैर मुस्लिम है तो आपको बड़ी जॉब मिल रही है, आपको तरक्की मिल रही है, आप गैर मुस्लिम है तो आपकी वाह वाह हो रही है, लेकिन अगर आप मुसलमान है तो आप पीछे, आपको धकेला जा रहा है, ये भी तो आजमाइशें ही है। ये छोटी छोटी हैं हमारे जैसे लोगों के लिए, छोटी छोटी बहुत, कोई उस तरह से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही आपको जिस तरह से दूसरों को मिल रही है, ये छोटी छोटी आजमाइशें हैं। अगर हम इनके ऊपर ही गिव अप कर देते हैं, बड़ी आजमाइशें तो कोई आई नहीं हम पर, किसी ने किसी को टॉर्चर नहीं किया, बस कोई मैली आंख से ही देख ले तो हम उसी वक्त परेशान हो जाते। उस वक्त हम क्या करेंगे जब फितना दिज्जाल आ जाएगा, जिस वक्त वो कहेगा कि किसी को खाने को नहीं मिलेगा जब तक मेरे ऊपर ईमान ना लेकर आओ, तुम्हारी फसलें खत्म, तुम्हारी जॉब्स खत्म, तुम्हारे सब खाने पीने खत्म, जब खाने के लाले पड़ जाए तो तब कौन स्टेडफास्ट रहेगा, कौन जम के रहेगा। हम तो आज लोगों की बातों के ऊपर ही अपने दीन को छोड़ देते हैं, चलो गैर मुस्लिमों को छोड़े, अपने मुसलमान ही बातें बना रहे, हमारे खानदान बातें बना रहे होंगे, हमारे दोस्त अहबाब कोई बातें बना रहे, हमें ताने दे रहे हैं, हम तो उस पर ही छोड़ देते हैं, हमसे तो वो भी सुना नहीं जाता, वो क्या कहेंगे, हाय वो मुझसे नाराज हो जाएंगे, बस सिर्फ इसलिए कि आप अल्लाह ताला की बात को पूरा करना चाहते हैं, उसके मुताबिक चलना चाहते हैं, इस वजह से वो अगर आपसे नाराज हो जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तो फिर इन लोगों में से हैं जिनको अल्लाह ताला ने पसंद कर लिया था, जिनको अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या क्या खुशखबरियां रखी नहीं आगे, आप तो फिर उनमें से हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी थोड़ी बातों के ताने आपको परेशान करने लगते हैं, और आपको रात को नींद नहीं आती क्योंकि फलाने ये कह दिया, और आपको हर वक्त परेशानी और ये फिक्र लगी रहती है कि वो ये ना कह दें, अभी तो कहा भी नहीं है, लेकिन अभी ये ना कह दें, वो नाराज ना हो जाएं, उनको बुरा ना लग जाए, इसलिए छोड़ो दीन इस्लाम को, तो बाद में तौबा कर लेंगे, इसलिए छोड़ो अल्लाह के हुक्म को, छोड़ो रसूल की बात को, वैसा करो जैसा ये चाहते हैं, चलो उधर को जिधर हवा चलती है, जिधर को जमाना चल रहा है, तो फिर सोच लें कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, और हम कितनी तैयारी कर रहे हैं उस वक्त के लिए जब फितना दिज्जाल नमूदार हो जाएगा, हमारे वक्त में नहीं शायद, हमारी औलादों के नहीं तो आगे के वक्त में आ जाएगा, मगर जो आसार नजर आ रहे हैं कि बहुत करीबी है, जिस तेजी से लतरकबुन्ना तबक नान तबक हो रहा है ना, एक के ऊपर एक हालत, एक के ऊपर एक हालत, तो वक्त दूर नहीं है, और आप सब जानते हैं इस वक्त ईमान को मजबूत करने की जरूरत है, और अपनी औलादों को भी ये दिखाने की जरूरत है कि झुकना नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। उस वक्त हमारे हालात देखें, हम हर जगह कॉम्प्रोमाइज पे लगे हैं, इवन अपने मुसलमानों के भी आगे, आग की खदंगे तो छोड़ दें, हम अपने मुसलमानों के भी आगे कहाँ कहाँ हैं जहां पे हम झुक जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं क्योंकि इनके मूड ना खराब हो जाएं, क्योंकि इनको बुरा ना लग जाए। ये है हमारे ईमान की हालत आज, इतना नीचे जा चुका। और ये कुरान पढ़ने वालों का भी हाल है, बाकियों को तो छोड़ दें आप, बाकी तो क्या हालात चल रहे हैं वो सब जानते हैं। तो सोचें कि उनको उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ ये कि ये मुसलमान है, फिर सिर्फ ये कि अल्लाह पर ईमान रखते हैं, दैट वॉज द प्रॉब्लम। और आज भी देखें कोई और प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ ये नहीं देखा जाता लोगों से कि ये क्या पढ़ने बैठ गए, ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों ऐसे हिजाब ले लिए, ये क्यों अबाय पहन लिए, ये इन्होंने क्यों ऐसे नहीं करते जैसे हम कर रहे हैं, वो ही फहाशी, वो ही बेहयाई, वो ही झूठ, वो ही सूद, वो ही हरामकारियां, ये क्यों नहीं कर रहे? तो ये तो पागल है, वो इनके पीछे पड़ जाते सिर्फ इसलिए कि वो एक अल्लाह के मानना चाहते। और अल्लाह ताला को मानना सिर्फ ये नहीं है कि जुबान से कह दिया, उनके अंदर वाकई ईमान था, इसीलिए वो कूद भी गए आग में, उन्होंने ये गवारा कर दिया, उन्होंने दीन को छोड़ना गवारा नहीं किया। और अल्लाह वो जो अल अजीज और हमीद है, आप देखें यहाँ पे और कोई भी और अल्लाह ताला की सिफत आ सकती थी, लेकिन अजीज और हमीद लाया गया, वो उस अल्लाह पर ईमान रखते हैं जो अजीज और हमीद है। क्या मतलब इसका? अजीज अथॉरिटी, अल्टीमेट अथॉरिटी रखने वाला, अल्टीमेट पावर रखने वाला, जिसको कोई गालिब जिसके ऊपर नहीं आ सकता, उसका गलबा हर एक के ऊपर। मैंने ऐसे नहीं है कि वो जानते नहीं थे कि वो कौन है अल्लाह, उनको पता है कि उसकी मिल्कियत में हर चीज है, वो पूरी अथॉरिटी रखता है, पूरी पावर रखता है। वो ये नहीं कहने वाले थे कि अल्लाह ये हमारे साथ हो गया, तूने हमें बचाया नहीं और ऐसे नहीं किया, नहीं, वो जानते थे अल्लाह ताला अजीज है, उसका इख्तियार चलता है, और अल हमीद है, वो उससे बदजन नहीं हुए थे। ओहो हमें तो थोड़ी सी चीज हो जाए, अल्लाह हाँ तूने हमें ऐसे छोड़ दिया, हाय हाय हम तो ऐसे हो गए, और हमें अल्लाह ताला से गिले शिकवे हो जाते हैं फिर कि अल्लाह ताला ने हमारी फलां वक्त में हमें हमारी मदद नहीं की, फिर तो फिर हमारे साथ ये क्यों गुजरी, फिर उस वक्त अल्लाह ताला कहाँ था जब मेरे साथ ये गुजर रही थी, जब उसके साथ ये हो रहा था, वो अल्लाह ताला को अल हमीद समझते, तमाम तारीफ वाला हमीद महमूद है, जो जो अपनी जात में तारीफ वाला है। हमीद वो है जो जिसकी जात में इतने कमालात हों कि वो खुद काबिले सताइश है, काबिले हमद है, मुस्तहिक है हर हमद का, इस लायक है। एक होता है ना, एक बंदा लायक नहीं होता, ऐसे ही लोग उसको चढ़ाते जाते हैं, वो इस लायक नहीं है, मगर लोग तारीफों पे तारीफें करने लगे कि अल्लाह ताला इस लायक ही है कि उसकी तारीफ हो, वो इसको डिजर्व करता है, वो इसका मुस्तहिक है। अल्लाहु अकबर। तो वो अल अजीज समझते थे उसको कि अल्लाह ताला के पास सारा इख्तियार है और इन लोगों को भी कैफिर किरदार तक पहुंचाने का इख्तियार है। ये नहीं है कि वो इख्तियार नहीं रखता, ये नहीं कि ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो हमारा रब कोई कमजोर है, नहीं, वो तो गालिब है, और हमद में शुक्र भी है, तारीफ भी है। वो जानते थे, वो फिर भी आग में कूद के भी वो जानते हैं कि अल्लाह ताला तू तारीफ के लायक है और तेरा शुक्र है, क्योंकि तेरे एहसानात बहुत हैं, हम तो हक ही नहीं अदा कर सकते। सुभान अल्लाह। और आज जरा जरा सी बात पे गिला शिकवा, इवन बीमार भी हो जाए तो गिले, अल्लाह ने मुझे बीमार क्यों कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ वैसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, मेरे बच्चे के साथ ये क्यों हो गया, कितने शिकवे हैं, शिकवे दिलों में भरे हुए हैं, ऊपर से ईमान के दावे। आज इसके ऊपर भी बात होगी आगे इंशाल्लाह। अल्लाह दी लहु मुल्कु समावाती वल अर्द, वो अल्लाह वो अजीज और हमीद कौन है, वो ये जानते थे, यानी ये उनकी उनके दिल की बात है कि वो ये जानते थे कि वो है जिसके पास आसमानों और जमीन की बादशाहत है, अल्लाह वाला कुल्ली शैइन शहीद, और वो गवाह है हर चीज पर, यानी वो हमारे हालात को भी देख रहा है, वो हमारे हालात को जानता है। मुझे जैसे है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा, जब फरिश्ता आया पूछते हैं अल्लाह ताला को पता है, बोला हाँ उसको पता है कि आपको जलाया जाने लगा, तो वो जलाने पे राजी तो मैं जलने पे राजी, वो देख रहा है ना, वो तो खुद गवाह है ना, उसको तो खुद पता है ना हर चीज पे वो शहीद है, और बादशाहत है उसके पास आसमानों की और जमीन की। तो उस रब पे हम ईमान लाएं, उसके बाद इंसान की नजर कितनी ब्रॉड हो जाती है ना, इससे उठ जाती है छोटी छोटी चीजों से। बादशाहत है, मिल्कियत है, इख्तियार है, वो जो चाहे करे, फिर किस चीज बात का डर। तो फिर ये लोग जो मुजरिम हैं, जो आग में जलाने वाले हैं, वो भी ये ना समझें कि वो कहीं बच सकते हैं। और अल्लाह ताला देख रहा है कि जो इन मोमिनों के साथ भी हो रही है, और अल्लाह ताला उनको भी देख रहा है जो इतने संग दिल हैं कि बैठ के तमाशा देख रहे हैं। यानी इससे ज्यादा क्या संगली की बात हो सकती है, किसी को इसमें भी मजा आए कि वो ये देखे कि कोई लोग जल रहे हैं। इससे आप अंदाजा करें कि वो कैसे लोग थे। अल्लाह अकबर।